आप सुन रहे हैं SBS हिंदी। अपने रेडियो पर हर शाम सुनिए हमारा कार्यक्रम। आप हमारा कार्यक्रम हमारी वेबसाइट पर और SBS मोबाइल ऐप द्वारा सुन सकते हैं। sbs.com.au/hindi पर जाएं।
अल्बनीजी सरकार की चुनाव के इस साल में बजट की पेशकश आ गई है। कोषाध्यक्ष जिम चामर्स ने अपनी बजट की स्पीच के दौरान कुछ बड़ी घोषणाएं की। चुनावी वर्ष उनके बजट में झलका या नहीं झलका, कौन जीता कौन हारा, क्या है बजट की घोषणाओं का अर्थ, आज ये सब समझेंगे हम डॉक्टर राकेश गुप्ता से। डॉक्टर राकेश गुप्ता चार्ल्स डार्विन यूनिवर्सिटी में एसोसिएट प्रोफेसर है, पिछले 25 साल से फाइनेंस के एकेडमिक फील्ड में काम कर रहे हैं, उसको पढ़ा रहे हैं, उसको बहुत बारीकी से समझ रहे हैं और आज हमारे लिए समझा रहे हैं कि चुनावी वर्ष साल 2025 के इस बजट का क्या है अर्थ आम ऑस्ट्रेलियाई जनता के लिए। तो डॉक्टर गुप्ता, आपका बहुत स्वागत है SBS हिंदी में।
थैंक यू वैशाली फॉर इनवाइटिंग मी। तो मुझे जो है इस फोरम पे बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पहला चैलेंज तो यह है ऑनरेबल जिम चामर्स के लिए था कि ये चुनावी बजट है, और दूसरा चैलेंज है उनके लिए था कि ये चुनावी बजट जो है डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद और उनके जो है टैरिफ वॉर शुरू करने के बाद आया, तो उनको दोनों चीजों को जो है बैलेंस करना था। अगर ये सिर्फ चुनावी बजट होता तो ट्रेजरर का जो है ऑब्वियस जो बेंट था वो था कि एनर्जी रिबेट, टैक्स कट, मेडिकेयर, बल्क बिलिंग, हॉस्पिटल, एजुकेशन, जो कि जनरल पॉलिटिकली अपीलिंग पॉलिसीज हैं, पॉलिटिकली अट्रैक्टिव पॉलिसीज हैं। परंतु इस वक्त आया जबकि ग्लोबल चैलेंजेस जो आ रहे हैं, ट्रेड वॉर और मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट जो कि अभी इस वक्त चल रहे हैं, सो दैट इज कॉजिंग अ ह्यूज अमाउंट ऑफ इनस्टेबिलिटी इन द इकोनॉमी।
कोषाध्यक्ष ने कहा भी कि वैश्विक स्तर पर आंधी के बादल, स्टॉर्म क्लाउड्स घिरे हुए हैं।
बिल्कुल। तो अगर हम देखें कि यूएस और चाइना जो कि अपनी जो है ग्लोबल डोमिनेंस के लिए जो है वॉर कर रहे हैं, विच इज कॉल्ड एज अ ट्रेड वॉर, बट आई डोंट सी दिस एज प्योरली अ ट्रेड वॉर, विच इज कॉजिंग वन ऑफ द मेजर शिफ्ट्स फ्रॉम मल्टीपोलर वर्ल्ड टू कमिंग टू अ बाईपोलर और अ यूनिपोलर वर्ल्ड। तो यूनिपोलर और बाईपोलर वर्ल्ड विच इज डोमिनेटेड बाय वन कंट्री और टू फॉर दैट मैटर is not good for the global politics. चाहे वो जो unipolar world जो है, चाहे उसका जो view है वो हमारी Australian way of life के कितना भी नजदीक हो, it causes weakening of the international regulatory framework that is more important in a multipolar world. Trade wars cause decline in innovation, it causes prices and lower efficiency, it causes decline in productivity, causes emergence of monopolization and abuse of market power by large corporations, which we have seen very frequently, and no fear of losing market share, increase in income inequality. So generally speaking, globalization reduces poverty, facilitates innovation, technological transfer, and improves individual freedoms and strengthening of democracy. So that's the inherent advantages of globalization or a multipolar market model.
जी, तो इस परिस्थिति में डॉक्टर गुप्ता, जब हम ग्लोबलाइजेशन की इतनी बात कर रहे हैं और हम जानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया का बाजार बहुत ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय बाजारों पर भी निर्भर रहता है, ऐसे में जो नए टैक्स कट है, कॉस्ट ऑफ लिविंग की सिचुएशन को आप किस तरह देखते हैं?
To put it simply, I would have expected this budget to be more investment oriented, where you have investments into improved productivity, innovation, competitiveness in the global market. One thing that I see in this budget is the removal of this non-competitive clauses that has some sort of potential for improving competition, productivity and innovation. Ye bahut hi small contribution hai productivity mein. This is all about low-skilled wages or low-skilled workers. But still, ye jo hai, un workers ko jo hai, मोटिवेट करेगा स्किल लेवल्स को बढ़ाने के लिए टू इम्प्रूव और टू मूव अप द लैडर. देयर इज सम बेनिफिट.
एक माइग्रेशन की अगर हम बात करें तो सरकार का ऐसा कहना है कि वो टारगेटेड परमानेंट माइग्रेशन को देखना चाहती है ताकि जो स्किल्ड लेबर की कमी है, जो कौशल की कमी है, उसको पूरा किया जा सके. उस मुताबिक क्या आपको लगता है कि माइग्रेशन को कम किया जा सकता है, क्योंकि शब्द इस्तेमाल किए गए हैं टारगेटेड परमानेंट सेटलमेंट.
हम अगर पिछले जो है 20 साल का रिकॉर्ड देखें माइग्रेशन के बारे में, जो पॉलिटिकल डिस्कशन है, जो राजनीतिक डिस्कोर्स है, उसके अंदर हमेशा जो है माइग्रेशन के बारे में जब बात होती है वो एक नंबर से शुरू होती है कि पिछले साल जो नंबर था उससे हम कम करेंगे या ज्यादा करेंगे. ये बात कभी नहीं होती कि हमें जो है इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए या हमारी स्किल शॉर्टेजेस के लिए या हमारे जो है स्किल इम्प्रूवमेंट के लिए कौन सी स्किल्स के लिए हमें जो है बाहर से लोगों को बुलाना चाहिए उस बारे में, और उससे हम नंबर पे आए वो नहीं होता. हम नंबर से शुरू करते हैं, 260 लाख या 260,000 पे जो है कैप करेंगे या वट एवर दी अदर नंबर में भी. तो माइग्रेशन के बारे में जो बात है या जो डिस्कशंस हैं या पॉलिटिकली चार्ज्ड हैं उनको आना चाहिए इस बात से कि माइग्रेशन लेवल्स क्या होने चाहिए टू ओवरकम द स्किल शॉर्टेज और टू सप्लाई द स्किल्स.
जी, और इसी तरह के का एक इम्पैक्ट अंतर्राष्ट्रीय छात्रों पर भी देखा जा सकता है, जिन पर ऑस्ट्रेलिया की जो अर्थव्यवस्था है वो काफी कुछ निर्भर करती है. खासकर हमारा जितना भी सॉफ्ट एक्सपोर्ट है वो एजुकेशन से है.
एजुकेशन बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, ये कहना चाहिए. बहुत सी चीजें जो है निर्भर करती है, सिर्फ जो है कॉलेजेस या यूनिवर्सिटीज या ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन से नहीं, बट उसके साथ में जो बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर है जो इस इंडस्ट्री के इर्द गिर्द चलता है वो भी उसके ऊपर डिपेंडेंट है. सिर्फ उसको एक राजनीतिक का प्रोजेक्ट से नहीं देख सकते, एक राजनीतिक भाषा में हम उसके बारे में बात नहीं कर सकते. उसको हमें ये देखना चाहिए कि बाहर से आके उस एजुकेशन को हासिल करना चाहते हैं, और उसके साथ में उनका ये भी ऑब्जेक्टिव अगर है कि हम उस एजुकेशन को गेन करके ऑस्ट्रेलिया की जो प्रोडक्टिविटी है उसको इम्प्रूव करेंगे या उसको कंट्रीब्यूट करेंगे, तो उसके अंदर कहीं कोई जो है गलत नहीं है. उसको हमें जो है एक रेशियल या माइग्रेशन या उसको राजनीतिक दायरे में देखने की बजाय उसको इस दायरे में देखना चाहिए कि वो जो है एक बहुत ही वैल्यूएबल इंडस्ट्री है जिसको हम सस्टेन करना चाहते हैं और दुनिया की एजुकेशन की जो शॉर्टेज है उसको फुलफिल कर रही है.
जी, एक तरफ तो ये बात कर रहे हैं कि ये माइग्रेशन को कम करना चाहते हैं, और दूसरी तरफ जो पहली बार घर खरीद रहे हैं ऑस्ट्रेलियाई उनके लिए हेल्प टू बाय जैसी स्कीम्स की बात हो रही है. तो आपको क्या लगता है कि नए लोगों पर खर्चा कम करके सरकार जो ऑलरेडी लोग यहाँ पर हैं, जो एग्जिस्टिंग पॉपुलेशन है, उसको सपोर्ट करना चाह रही है, या फिर खर्चे ही इतने ज्यादा हैं कि नए लोगों की बसावट इस समय ऑस्ट्रेलिया अफोर्ड नहीं कर सकता?
ये जो हेल्प टू बाय स्कीम है ये बहुत ही टाइम से जो है, पीटर कॉस्टेलो के टाइम से जो है इसके बारे में बातचीत चल रही है, चाहे लेबर गवर्नमेंट है चाहे लिबरल गवर्नमेंट है, दोनों ही सरकारों ने हेल्प टू बाय स्कीम्स, उसको नाम कुछ भी दे दो, बेसिकली जो आइडिया था पीटर कॉस्टेलो के टाइम पे वो आइडिया ये था कि सरकार जो है इक्विटी खरीदेगी घरों, जो आप घर खरीदना चाहते हैं उसमें, अब उसको जो है हेल्प टू बाय स्कीम का नाम दे दिया गया है. ये स्कीम जो है देखने में बड़ी ही अट्रैक्टिव नजर आती है, परंतु इस स्कीम के बारे में जो है उसको जो इकोनॉमिकली कैसे वो वर्क करेगी उसके बारे में अभी तक किसी ने भी कोई ढंग से प्रॉपर डिटेल्स नहीं दी है. 40% इक्विटी ने सरकार ने खरीद दी, उस इक्विटी को जब जो है घर का जो 60% ओनर है वो उसको जब बेचना चाहेगा तो उसके अंदर कैपिटल गेन्स कौन कैसे शेयर किया जाएगा, और कैपिटल गेन्स टैक्स कौन देगा? सरकार वो कैपिटल गेन्स टैक्स देगी उस 40% एक्विटी का? दिस इज अ वंडरफुल इनिशिएटिव इन टर्म्स ऑफ एक्सेसिबिलिटी, बट इन टर्म्स ऑफ लॉन्गर टर्म अफोर्डेबिलिटी उसका जो क्या इम्पैक्ट है, आज की तारीख में ये होगा कि घरों की प्राइसेस और बढ़ेंगे. आज की तारीख में जो एवरेज हाउस प्राइस है वो लगभग एवरेज इनकम का 10 गुना है ऑस्ट्रेलिया में. शंघाई विच इज कंसिडर्ड द मोस्ट एक्सपेंसिव 25 गुना है, लंदन 15 गुना, न्यूयॉर्क 7 गुना. ऑस्ट्रेलिया जो है वी कैन कंपेयर विद आइदर लंदन और न्यूयॉर्क. हमारा जो घर है वो न्यूयॉर्क से भी महंगा घर है। तो हम जो है सप्लाई साइड को इम्प्रूव करने की कोशिश जो है वो कम करते हैं, जबकि हम ये कहते हैं कि ये हम कभी तो फॉरेन बायर्स को रिस्ट्रिक्ट करेंगे, या हम जो है ये 40% हर्ट टू बाय स्कीम करेंगे, या सुपर एनुएशन से जो है हम एक्विटी बोरो कर सकते हैं उस स्कीम्स में जाएंगे। वो स्कीम्स जो है एक्सेसिबिलिटी इन द शॉर्ट टर्म शायद बढ़ा दें, उसमें भी मुझे शक है, परंतु लॉन्गर टर्म अफोर्डेबिलिटी को वो बढ़ाएंगी उसमें मुझे शक है।
थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं इससे डॉक्टर गुप्ता, और बढ़ते हैं सोशल कोहेजन यानी सामाजिक समावेशन की तरफ, जिसकी तरफ भी 178 मिलियन का एक कमिटमेंट किया गया है, और दूसरा एक डिफेंस का बजट है जहां पर ऑकस जैसी जो संधियां हैं उनके लिए भी कहा गया है कि बिलियनों डॉलर आगे दिए जाएंगे। अब इन दो बातों में ये उठा है कि सोशल कोहेजन इस समय ऑस्ट्रेलिया की एक बड़ी समस्या है। हमें कई ऐसे मुद्दे, कई ऐसे इंसिडेंसेस, कई ऐसी वारदातें देखने को मिल रही हैं जहां पर समझ आ रहा है कि समुदायों के बीच में कुछ टेंशन है। उस आंतरिक कलह को क्या हम संभाल पा रहे हैं, और क्या बाहर के डिफेंस में इस समय बजट देना ज्यादा समझदारी का काम होगा?
ये दो चीजें जो है देखने में कई बार म्यूचुअली एक्सक्लूसिव लगती हैं, पर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है। बाहर के देशों में कलह हो रहा है, उन डिबेट्स को हम जो है बहुत ही ज्यादा रेशियली चार्ज कर देते हैं, एक साइड लेना चाहते हैं। वो एक साइड लेने के चक्कर में हम जो है ये मान लेते हैं कि दूसरी साइड बिल्कुल ही गलत है। तो माइग्रेशन माइग्रेंट कम्युनिटी सपोर्ट जो है जिसमें हम 178 मिलियन डॉलर इन्वेस्ट कर रहे हैं, अब उसमें भी अगर हम देखेंगे तो वो 178 मिलियन डॉलर जो है बल्क ऑफ दैट इज एलोकेटेड ऑन वन साइड। हमें उस चीज को जनरली सेक्युलर कर देना चाहिए रादर देन बीइंग इट एलोकेटेड टू अ पर्टिकुलर प्रोजेक्ट्स और पर्टिकुलर साइड्स। तो इट्स अ गुड इनिशिएटिव, परंतु जो उसका रेट्रिक है वो सही नहीं है। डिफेंस बजट जब दुनिया जो है मल्टीपोलर से बाईपोलर या यूनिपोलर की तरफ जाएगी तो हमें अपना जो है डिफेंस बजट बढ़ाना ही पड़ेगा, वो बढ़ाना जो है कोई गलत नहीं है, परंतु हमें ये भी देखना चाहिए कि हम जो है वो बाईपोलर और यूनिपोलर दुनिया की तरफ क्यों जा रहे हैं और उस तरफ हमें नहीं जाना चाहिए। और ज्यादा कोशिश करनी चाहिए कि हम जो है वो मल्टीपोलर इंस्टीट्यूशंस को बनाए रखें रादर देन हम जो है मल्टीपोलर इंस्टीट्यूशंस के सॉर्ट ऑफ न्यूट्रल हो जाएं, या हम जो है बाईपोलर और यूनिपोलर की तरफ जो है अपने शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स को देखते हुए हम एक साइड की तरफ जाएं।
और एक आखिरी सवाल मेरा आपसे ये रहेगा डॉक्टर गुप्ता कि ओवरऑल बजट को आप किस तरह से देखते हैं, खासकर प्रवासी समुदायों के लिए जिसमें भारतीय ऑस्ट्रेलियाई समुदाय भी शामिल है?
ओवरऑल बजट को मैं देखता हूँ कि लॉस्ट अपॉर्चुनिटी जनरली स्पीकिंग विदाउट लुकिंग एट दी प्रवासी समुदाय, बट जनरली स्पीकिंग दी बजट इज अ वेरी बिग लॉस्ट अपॉर्चुनिटी। हमें जो है प्रोडक्टिविटी इनोवेशन कॉम्पिटिटिवनेस की तरफ जो है ज्यादा इन्वेस्ट करना चाहिए था। अगर हम जाते हैं जो प्रवासी समुदाय की तरफ, तो प्रवासी समुदाय के लिए ये बजट जो है ना तो बहुत ही कोई फायदेमंद है और ना ही कोई जो है उनके अगेंस्ट है। इट्स इन दैट सेंस इट्स ए न्यूट्रल बजट फॉर द माइग्रेंट कम्युनिटी इन दैट सेंस। इट्स मोर टारगेटेड टुवर्ड्स बैलेंसिंग द इलेक्शन ईयर एंड द अपहीवल इन द ग्लोबल कम्युनिटी।
तो आज आपने इतना समय निकाला डॉक्टर गुप्ता और बजट के ऊपर हमसे इतनी चर्चा की और इतनी सामयिक चर्चा की, उसके लिए बहुत शुक्रिया।
बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।
इस रिपोर्ट में दी गई जानकारी सामान्य है, SBS ना ही यहाँ प्रकट किए गए विचारों से सहमत है और ना ही असहमत। अपनी विशेष परिस्थिति के लिए किसी विशेषज्ञ से सलाह लें।
SBS रेडियो से डाउनलोड करने के लिए आपका धन्यवाद। हमारा पूरा कार्यक्रम आप कैसे सुने, इसके लिए sbs.com.au/hindi पर जाएं।